बहुत इंपॉर्टेंट सबक इस लिहाज से है कि इसमें आज हम एक आयत पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी है जब उस पे पहुंचेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तौबा आयत नंबर 107, तफसीर देखते हैं। वल्लदीन अत्तखज़ू मस्जिदन दिरार, और वो लोग जिन्होंने बनाई मस्जिद सताने के लिए, दिरार मस्जिद, यानी एक मस्जिद ऐसी भी हो सकती है जो जरर देने के लिए होती है। मस्जिद का जहन में आते ही क्या आता है कि मस्जिद कोई ऐसी जगह ही है जहां पे अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जहां पे अल्लाह की इबादत होती है, जो अल्लाह का घर है। लेकिन बाज दफा लोगों के बुराई की वजह से, उनकी बदअमली की वजह से, उनकी नियतों में फितूर की वजह से मस्जिद भी कोई मस्जिद दरार जैसी बन सकती है। अब ये मस्जिद कौन सी थी, इसका क्या बैकग्राउंड है, तो इसके ऊपर पहले देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आयतें किस बारे में है। असल में ये वाकया मदीना में एक आदमी था अबू आमिर, उससे रिलेटेड है। वो अबू आमिर जो था वो मदीना में रहा करता, पहले तो आपको पता है ये मुशरिक होते थे ना, लेकिन ये नसरानी हो गया था और राहिब के नाम से मशहूर था, यानी रहबानियत इख्तियार कर ली, दुनिया से बेताल्लुकी, जुहद, तकवा, इसके अंदर बड़ा ही मशहूर। अच्छा, अब ये ही वो अबू आमिर है जिसके बेटे का नाम है हंजला, हंजला रजी अल्लाह तआला, मशहूर सहाबी है ना, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया, ऐसे करते आ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जिनकी बॉडी को फरिश्तों ने गुसल दिया था, और गसीलुल मलाइका कहलाते हैं ये, अगर आपने सीरत में ये वाकया सुना हो तो। लेकिन बाप जो था वो हालांकि एक हक दीन पे, उससे इस्लाम से पहले तो ईसाइयत ही हक थी ना, एक हक दीन पे होने के बावजूद उसके अंदर गुमराही थी। और गुमराही कैसे, वैसे तो राहिब था, बड़ा सूफी, बड़ा दुनिया से अलग, ये इसकी वजह से बड़ा ही मशहूर हो गया था वह लोगों में, लोग उसको बहुत पसंद करते थे, और इसीलिए पसंद करते थे कि भाई इतना, जिसको हम कहते हैं नेक इंसान, पहुंचा हुआ इंसान, भाई सूफियाना तबीयत है, देखो इसको दुनिया से तो कोई लेना देना ही नहीं, और इसकी नेकी बड़ी मशहूर थी, इसका मकाम था लोगों में, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत बड़ा शेख। ठीक है, अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो इसको तो ये बड़ी बात खटकने लगी कि अच्छा मैं इनकी बात मान लूं, मैं खुद इतना बड़ा आदमी, और वो इंसान के अंदर एक नेकी का गुरूर पैदा हो जाता है ना, एक अपनी नेकी का अजब, एक अपनी नेकी का एक जोम पैदा हो जाता है कि मैं तो बड़ी चीज हूं। और यही बहुत सारे लोगों के रास्तों में रुकावट बना, कि हालांकि वो अपनी तरफ से नेकी के रास्ते पे चल रहे होते, लेकिन यही चीज तो उनको रोक देती है हक कबूल करने से, कि हम तो खुद इतनी बड़ी चीज हो गए, हम अब किसी की माने, हम अब किसी के अंडर काम करें, हम अब किसी और को कह दें कि वो हक पे है, तो हम आज तक क्या गलत थे? तो ये बड़े बड़े नेक लोगों और बड़े बड़े ऐसे लोगों के साथ हुआ है। अब जे देखिए पीछे शैतान के साथ भी तो यही था ना, कि उस पे इबादत गुजार तो वो भी बहुत था, लेकिन यहीं पे आके इंसान मार खा जाता है कि जब वो अपनी नेकी के जोम में मुब्तला हो जाता है कि मैं बड़ी चीज हूं। तो नबी अलैहि सलातो वस्सलाम जब मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दुश्मन थे जो बड़े थे, एक अब्दुल्ला बिन उबई, वो भी देखे रईसुल मुनाफिकीन, उसकी भी ताजपोशी होने वाली थी मदीना में, और उसको यानी एक बड़ा रुतबा मिलने वाला था, लेकिन नबी अलैहि सलातो वसल्लम के आने की वजह से वो तो सारी धरी की धरी रह गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मरान बन गए, उसका क्या रह गया, कुछ भी नहीं। तो इसलिए वो भी बहुत बड़ा दुश्मन हो गया, और एक ये अबू आमिर था। तो उसने कहा कि पहले तो सोचा कि ये तो कामयाब नहीं होंगे, ये तो नाकाम हो जाएंगे, तो इसलिए बदर तक तो वो चुप करके बैठा रहा। मगर बदर में जब उसने मुसलमानों की फतह देखी और उसने कहा ये तो बड़ी उभरती हुई एक ताकत बन रही है, तो मुसलमानों के खिलाफ उसने तबलीग शुरू कर दी। वो जाता है लोगों के पास जाके मुकाता है, उकसाता कि आप इनके ऊपर हमला करें और आप ये करें, गठजोड़ करता लोगों के साथ, और बहुत से मुनाफिक भी किसके साथ मिल गए थे। ओहद में भी जो कुरैश ने हमला किया था तो इसने उनको उकसाया था। और अब्दुल्ला बिन उबई जो अपने लोगों को लेके अलग हो गया था ओहद में, तो वो भी यानी समझ लें कि इसके साथ एक इसके पीछे भी यही था। तो इसी ने ओहद में अपने साथियों के साथ मिलके गड़े खोद दिए थे, जिसमें से एक गड़े में नबी अलैहिस्सलाम का पांव मुबारक फिसला था और आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए थे। तो हुनैन तक इसने अपनी एक्टिविटीज जारी रखी, कभी कहीं जाता कभी कहीं जाता और जाके लोगों को भड़काता। उसके बाद इसने कहा कि अब तो पानी सर से गुजर रहा है, तो ये फिर कैसर रोम के पास चला गया, क्योंकि ये भी ईसाई था वो भी ईसाई है, उनको जाके भड़काया। और उसने वहां से फिर एक पैगाम भेजा अपने साथियों को मदीना में कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसर मदीना पे चढ़ाई कर दे, मगर तुम लोग भी तो कुछ करो, तुम अब इकट्ठे हो जाओ और तुम मदीना में एक मकान बनाओ और जाहिर ये करो कि ये हम मस्जिद बना रहे हैं, ताकि मुसलमानों को भी शक ना हो। फिर इस मकान में तुम अपने लोगों को जमा करो, जितना भी असलहा सामान जमा कर सकते हो वो करो, और यहाँ पे हम आपस में मशवरा किया करेंगे, जो भी हमारी बातचीत होगी यहाँ पे हमारा मीटिंग का एक सेंटर हो गया। तो उसकी इस बात के ऊपर 12 मुनाफिकीन ने मदीना के मोहल्ला कुबा में, जहाँ सबसे पहले आपको पता है ना हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कयाम फरमाया था कुबा में, तो उसी के आसपास एक और मस्जिद की बुनियाद रखी। फिर मुसलमानों को फरेब देने के लिए, धोखे में रखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि आप हमारी मस्जिद में आके नमाज पढ़ें, ताकि मुसलमान भी मुतमईन हो जाएं और फिर उसके बाद हम वहां पे नमाज पढ़ें, ताकि ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तो एक मतलब उसके ऊपर हाथ हो जाए कि आपने इसको एंडोर्स किया है। तो नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त तबूक जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो आपने फरमाया कि ठीक है मैं जब तबूक से वापस आ जाऊं तो फिर मैं यहाँ पे आके नमाज पढ़ लूंगा। और इन्होंने कहा क्या कि हमने क्यों ये मस्जिद बनाई, इन्होंने कहा देखें जब कुबा की जो मस्जिद है ना वो भी बहुत सारे लोगों से दूर पड़ जाती है, और कई लोग बूढ़े हैं कई बीमार हैं, उनको भी वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है, और वैसे भी कुबा की मस्जिद इतनी बड़ी नहीं है कि पूरी बस्ती के लोग उसमें समा सके, इसलिए हमने एक और दूसरी मस्जिद बना ली ताकि कमजोर लोगों का भला हो जाए ना। देखिए कितनी अच्छी नीयत बताई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक से वापस आ रहे थे तो इनसे तो वादा करके गए थे ना कि मैं वापस आके इस मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा, लेकिन वापसी पे ही अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमा दी जिनमें इन मुनाफिकीन की साजिश को खोल दिया। तो जब आयतें उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद सहाबा को भेजा और उनको हुक्म दिया कि अभी इसी वक्त उस मस्जिद को जाकर ढा दें और उसको आग लगा दें। तो ये सहाबा उसी वक्त गए, हुक्म की तामील की और उस मस्जिद को गिरा दिया, जमीन बोस कर दिया। और तफसीर मजहरी में ये भी आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना में पहुंच गए तो मस्जिद जिरार की जगह खाली पड़ी थी, आपने आसिम बिन अदी को इसकी इजाजत दी कि वो इस जगह पे अपना घर बना ले। उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह जिस जगह के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने कुरान में आयात नाजिल कर दी है, मैं तो उस मनहूस जगह पे अपना घर बनाना पसंद नहीं करता, आप किसी और जरूरतमंद को दे दें जिसके पास कोई घर नहीं है, तो वो वहां पे मकान बना दे। तो इसके ऊपर साबित बिन अकरम थे तो उनको ये जगह दे दी गई, मगर हुआ ये कि साबित उस मकाम में जब रहे तो जब तक वहां पे रहे उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, यहाँ कोई औलाद जिंदा भी नहीं बची। तारीख ने लिखा है कि इंसान तो क्या इस जगह पे कोई मुर्गी भी अंडे बच्चे देने के काबिल नहीं रही, कोई कबूतर और जानवर भी इसमें फला फूला नहीं। चुनाचे इसके बाद ये जगह आज तक मस्जिद कुबा से कुछ फासले पे वीरान पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। तो जगहों की भी इंसान देखे, जगह खुद बाय इट सेल्फ कोई उसमें नहुसत नहीं होती, मगर इंसान के अमल जो है ना किसी जगह को भी ऐसा कर देते हैं। जैसे कौमे लूत का जो अब डेड सी है, लोग उससे मट्टी लेके चेहरों पे लगाते हैं जी बहुत अच्छी स्किन के लिए, ऐसी जगह की मट्टी भी कैसे बाबरकत हो सकती है जिस जगह पे अल्लाह का आजाब आया। इस जगह पे देखें जहां पे मस्जिद जरार थी, आज तक नहीं वो बस सकी वो जगह। तो इसलिए इंसान के अमल हैं जो किसी जगह को बाबरकत बना देते हैं, किसी जगह को में नहुसत आ जाती है उसके अमल की वजह से, या वहां पे बुराई होती है। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब मैंने जैसे आपको बताया जरर क्या होता है, जरर उस नुकसान को कहते हैं जिसमें उसके करने वाले का अपना फायदा होता है दूसरे का नुकसान होता है। लेकिन जिरार क्या है, तो दूसरों को नुकसान पहुंचाना अपना भी कोई फायदा ना होना। ठीक है, तो इन्होंने जिन्होंने ये मस्जिद बनाई थी इनका अपना भी कोई इसमें फायदा नहीं हुआ। ये चाहते थे कि इससे नुकसान ही दे मुसलमानों को। तो वो लोग जिन्होंने बना ली एक मस्जिद अजियत देने के लिए, वह कुफरन और कुफर के लिए, कुफर के लिए यानी यहाँ पे वो क्या काम करेंगे, वही काम करेंगे जिन जो कुफरिया काम है, जो इस्लाम के रास्ते में रुकावट बनने वाले काम है, वह तफरीकम बैनल मुमिनीन और जुदाई डालने के लिए ईमान वालों के दरमियान, यानी ईमान वालों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए। आप देखें कि जब एक जगह पे मस्जिद है और दूसरी जगह भी मस्जिद हो गई तो फिर क्या होगा, एक के नमाजी बट जाएंगे और दूसरी के दूसरी में चले जाएंगे तो क्या होगा, मस्जिद कुबा के नमाजी भी घट जाएंगे, कुछ लोग यहां पढ़ेंगे कुछ वहां पढ़ेंगे। वैसे भी एजेंडा क्या था, मुसलमानों की तबाही। व इरसाद लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन कब्ल, और पनाहगाह के तौर पे बनाना था इसके, यानी मकासिद बयान किए गए हैं कि इसके चार मकासिद। इन्होंने उसका नाम मस्जिद ज़रार थोड़ी रखा था, ये तो अल्लाह ताला ने उसका नाम मस्जिद ज़रार रखा। तो उसका पहला मकसद क्या था, जरर पहुंचाना, दूसरा कुफर, तीसरा तफरीक करना बैनल मुमिनीन, और चौथा कि एक पनाहगाह मिले जहां पे वो उस बंदे के लिए जिसने जंग ली हुई अल्लाह और उसके रसूल से इससे पहले, यानी जो भी आएगा वो यहाँ पे इनके दुश्मन जो मुसलमानों के होंगे उनको यहाँ पे पनाह दी जाएगी। तो ये भी एक काम लेना था ना यहाँ। तो अल्लाह ताला ने इस मस्जिद को बता दिया कि इसके ये एजेंडे हैं। इसी तरह उलमा कहते हैं कि जो कोई मस्जिद इसी काम के लिए बनाई जाए कि एक मस्जिद मौजूद है जो हक पे है और उसके पास जाके दूसरी मस्जिद बना ली जाए और उसका मकसद ये हो कि तोड़ना, तफरीक पैदा करना, फिरका वारियत को उभारना, और वहां पे कोई ऐसी एक्टिविटीज का होना जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचता हो, तो वो भी मस्जिद ज़रार के मुशाबे है। उसको आप ये नहीं कह सकते ये भी मस्जिद ज़रार है, मगर वो भी मस्जिद ज़रार के मुशाबे है, उसी जैसी है। अब ये मतलब नहीं कि कोई उठ के चल पड़े कि हम भी आके जाके उसको तोड़ते हैं और उसको आग लगाते हैं, उसको ढाते हैं, ऐसे हम नहीं कर सकते आज, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का एक हुक्म था ना। तो लेकिन ये जरूर है कि ऐसी कोई भी मस्जिद कोई बनाता है तो वो चाहे उसका नाम मस्जिद भी रख ले, लेकिन अगर उसका मकसद ही मुसलमानों को तोड़ना है, मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करना है और ये ऐसे बुरे मकासिद हों, तो फिर उस मस्जिद को बनाने वाले को कोई सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि वो उल्टा गुनाहगार होगा। ठीक है। हाँ, जो लोग उसमें नमाज पढ़ेंगे उनकी तो अपनी नियतें हैं, उनकी नमाज तो कबूल हो जाएगी, लेकिन जो बनाने वाले हैं उनको इसका कोई अजर नहीं है। मगर ये नहीं कि कोई उठ के जाके आग लगाने शुरू कर दे, ये सही नहीं है। हजरत उमर ने एक फरमान जारी किया था अपनी खिलाफत में, जिसमें हिदायत की गई थी कि एक मस्जिद के करीब दूसरी मस्जिद ना बनाई जाए, जिससे पहली मस्जिद की जन्मात और उसकी रौनक मुतासिर। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, और अलबत्ता वो जरूर कसमें खाएंगे कि हमने तो कोई इरादा नहीं किया मगर भलाई का। हमने क्या, हमारी तो नीयत इतनी अच्छी, हमारे इरादे इतने अच्छे। देखिए, हमने तो यही कहा था कि बीमार बेचारों को करीब जगह मिल जाएगी, जो बूढ़े हैं, जयीफ हैं, कमजोर हैं, नहीं जा सकते, तो चलो उनको एक बाजमात नमाज पढ़ने की जगह मिल जाएगी। तो हम तो बड़ी भलाई चाहते थे, हमने तो भला किया, और वो अपनी यानी इसमें सफाई पेश करेंगे। देखिए, यही बात होती है ना कि बातें सबके पास बड़ी खूबसूरत होती है। हमारा तो इरादा ये, हमारा तो भलाई का इरादा, हम तो इस्लाम से जुड़े। आज का वक्त ना दौरे दज्जाल है, दौरे फितन है, और दौरे फितन का एक बहुत बड़ा ही एक बात जो उसमें होगी वो है डिसेप्शन। क्या है डिसेप्शन? यानी जो चीज जो नजर आ रही होगी वो वैसी नहीं होगी, और इसके अंदर बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। आज शैतानी चीजें जो है ना वो इस्लाम के लबादे ओढ़ के और फिर जाहिर हुई है, यानी शैतानी काम है, लेकिन नाम किसका है? इस्लाम का। लबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ है ऊपर इस्लाम का। अब लोग जो इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं और सादा लोग होते हैं, वो इस्लाम का नाम ही सुन के कहते हैं हाँ भाई वो देखो इस्लाम का नाम ले रहे हैं और वो नमाजें पढ़ते हैं, लिहाजा वो बहुत ही अच्छे हैं, ये तो बड़े दीनी हैं, और वो उनका उनके साथ खड़े हो जाते हैं। हालांकि वो ये नहीं देखते कि ये क्या काम कर रहे हैं, इनके मकासिद क्या हैं, ऊपर ऊपर से अगर ये कोई चीज दिखा रहे हैं तो उसके पीछे क्या है। तो इस चीज में बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये आज के वक्त का बहुत बड़ा फितना है। अब देखिए, बजाहिर देखने में उन्होंने एक मस्जिद बनाई, और ये भी एक बड़ी जबरदस्त बात है कि देखो वाकई कितना अच्छी नीयत लगती है ना, कि कसमें खा खा के कह रहे हैं हमने तो इसलिए बनाई है कि अब फायदा हो मुसलमानों का, लेकिन पीछे क्या एजेंडा है, पीछे क्या बात चल रही है। किसी के जो मकासिद हैं वो बताते हैं कि कितनी हद तक वो अपनी बात में सच्चा है। और आज भी जो बहुत सारे लोग ऐसी तंजीमें हैं, ऐसी ऐसी यानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लाम का नाम लेती हैं, लेकिन पीछे उनके क्या है? कहने को वो बड़ा दीन फैला रहे हैं, दीन के गलबे के लिए जी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके काम देखें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि नहीं, इनका दीन से तो कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो लोगों को धोखा दे रहे हैं दीन के नाम पे। तो इस्लाम का नाम सुन के एकदम गिरना पड़ा करें, बल्कि अपनी अकल इस्तेमाल किया करें कि ये बंदा जो बात कह रहा है या जो उसके अमल के अंदर चीजें आ रही हैं, क्या ये वाकई वही है जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, या उसके उलट है, जिनका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह ताला गवाही देता है कि बेशक वो लोग अलबत्ता झूठे हैं। आप देखें कि इसका मतलब है कि कसमें भी कोई झूठी खा सकता है। हम कसम के को सुन के बहुत जल्दी पिघल जाते हैं और सोचते हैं देखिए नहीं उसने कसम खाई है तो कसम खाई है तो सच्चा ही होगा। जरूरी नहीं है कि जो कसम खा रहा है वो सच ही बात कह रहा हो, अल्लाह ताला गवाही देता है कि ये लोग झूठे हैं। अब ये देखिए ना, ये जो आयतें ना सारी अभी जो हम पढ़ेंगे 127 आयत तक, ये सारी इसी तनाजुर में आप पढ़ेंगे, ये तबूक का और तबूक से वापसी का और फिर मुनाफिकीन का जिक्र और उनकी साजिशों का जिक्र और मोमिनों को हिदायत इसमें दी जा रही है और नुकसान से बचाने के लिए उनको बताई जा रही है इनकी हकीकत, ये जो मुनाफिक है। ला तकुम फीही अबदा, आप हरगिज यहाँ पे खड़े ना हो, कभी भी। किसको कहा जा रहा है? नबी अलैहिस्सलाम को, कि आपने यानी यहाँ कहाँ नहीं खड़े हो ना, यानी मस्जिद जिरार में कभी नमाज नहीं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा करके आए थे उनसे कि मैं वापसी पे आऊंगा तो मैं यहाँ पे नमाज पढ़ूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इस जगह की हकीकत को खोल दिया और फरमाया आप यहाँ पे कभी नमाज नहीं पढ़ेंगे। देखे ना, जिस मस्जिद का की बुनियादी मुनाफकत पे है, और जिस मस्जिद का एजेंडा ही यही चार चीजें हैं, वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज पढ़ लेते तो लोग सोचते कि आपने तो यहाँ पे नमाज पढ़ी है, तो ये तो जरूर अच्छी जगह होगी, इसलिए आपको रोक दिया गया। लमस्जिदुन उससे आला तकवा मिन अव्वलियों में, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से, सिंस द फर्स्ट डे, तकवा पे रखी गई है, अहक्कु ज्यादा हकदार है अन तकूम फिहा, कि आप उसमें खड़े हो। अब ये कौन सी मस्जिद है जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पे रखी गई है? मुफस्सिरीन ने इसमें दो राय दी हैं। बाज कहते हैं कि ये इससे मुराद मस्जिद नबवी है, इसलिए कि उसमें उसकी बुनियाद तकवा पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बुनियाद रखी, और आपसे ज्यादा मुत्तकी कौन हो सकता है, तो वो तकवा वाली मस्जिद तो सबसे ज्यादा तकवा वाली तो वो ही है। दूसरे कहते हैं कि इससे मुराद मस्जिद कुबा है, क्योंकि आगे एक बात आ रही है जो उन लोगों से रिलेटेड है। लेकिन पहले आप यहाँ पे समझ लें कि यानी मस्जिद की बुनियाद, अभी मस्जिद खड़ी नहीं हुई, अभी उसकी बुनियाद रखी जाए ना, तो पहले दिन से ऐसा होना चाहिए कि उसमें खौफे खुदा हो। और अगर किसी का अमल ये बता रहा है कि वो खौफे खुदा नहीं रखता, बल्कि उसके तो कुछ और ही मकासद हैं, यहां से लड़ाई हो गई, अपनी एक और मस्जिद शुरू कर दी, वहां के लोगों को इधर बुलाना शुरू कर दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मस्जिदों के अंदर लड़ाइयां हो जाती हैं, एक दूसरे से तू तू मैं हो गई, झगड़े हो गए, और एक पार्टी अलग होके जाके उसने एक और मस्जिद बनानी शुरू कर दी। ये मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक होना चाहिए। अब इस मस्जिद की बुनियाद क्या होगी? लड़ाई झगड़े? हाँ, ये अलग बात है कि एक मस्जिद है जो बनाई भी है अल्लाह के नाम पे, लेकिन उसके अंदर शिर्क है, बिदात है, और वो लोग उससे बाज भी नहीं आ रहे, और ना उससे हटाया जा पा रहा है, और फिर उसके बाद कोई और मस्जिद खड़ी कोई कर रहा है जो तौहीद की है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन ऐसे ही बस मस्जिदें खड़े करते रहना, क्योंकि उनसे लड़ाई हो गई, तीसरे ने कोई और तीसरी जाके शुरू कर दी, पार्टियां अलग अलग होके और अलग अलग अपने अपने मरकज बनाने लगी हुई, जबकि मस्जिद जो है वो सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती, मुसलमानों के इत्तेहाद इत्तेफाक की जगह, जहां पे मुसलमान मिल के चले, वो जगह भी होती है। तो इसलिए मस्जिद का बड़ा ही मकाम है, और उसकी वो उसको मजाक नहीं बना लेना चाहिए। तो अब ऐसी मस्जिद में आप नमाज पढ़िए ए नबी, जिसकी बुनियाद ही तकवा पे रखी गई है। और आप देखें, कुबा इससे मुराद इसलिए भी हो सकता है कि कुबा जो है उसमें नमाज का सवाब पढ़ने का उम्रे के बराबर है, तो ये कितनी बड़ी बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद सबसे पहले ये भी बनाई थी। तो इस मस्जिद की जो एक खास बात आगे बयान की गई, जिसकी वजह से सहाबा या मुफस्सिरीन ने इस लमस्जिदुन उससे सआलत तकवा से मुराद कुबा ली है, उसकी एक वजह यह है कि आगे आता है फी ही रिजालुन युहिब्बुना अन यततहारू, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पसंद करते हैं तहारत को, पाकी को पसंद करते हैं, यानी इसमें जो लोग नमाजी हैं वो पाक साफ रहने को पसंद करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, इसके पीछे हदीस है, कि तुम्हारी तारीफ अल्लाह ताला ने फरमाई है तो तुम तहारत के लिए क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम और तो कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन हम ढेले के अलावा पानी के साथ भी तहारत करते हैं। अब पानी उस जमाने में ना बहुत ही एक मुश्किल से मिलने वाली चीज थी, यानी बड़ी मुशक्कत की चीज थी। घरों में कोई नलके तो लगे नहीं हुए थे जहां से लोग पानी लेकर आते, तो पानी के साथ एक तहारत करना लोगों के लिए मुश्किल होता था आम हालात में, लिहाजा लोग ढेलों से ही कर लेते थे। इस्तिंजा जो था वो ढेलों से कर लेते थे, लेकिन जाहिर पानी से करना अफजल है, पानी से अफजल है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इनकी तारीफ बयान फरमाई है कि इसमें ऐसे लोग हैं जो तहारत को पसंद करते हैं। यानी अल्लाह ताला के नजदीक तहारत का कितना बड़ा मकाम है। फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है, पाकी इख्तियार करने वाले अल्लाह ताला के महबूब होते हैं। यानी गंदगियां, निजासतें, नापाकी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसीलिए हम सबको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम पाक साफ जिंदगी गुजारें और पाक साफ अपने लिबास, अपने जिस्म को भी रखें। बाज औरतें पीरियड्स खत्म हुए उसके बाद इतने दिन ऐसे ही बस घूमती रहती हैं कि भाई चलो नमाज ही नहीं पढ़नी पड़ेगी, पता नहीं। जब आपने देखा कि आप पाक हो गई हैं तो फौरन गुसल का एहतमाम कीजिए, जनाबत में है तो फौरन गुसल के एहतमाम करें, चाहे सुबह को उठ के गुसल करें, लेकिन गुसल करने में जल्दी करें। ऐसे नहीं कि अच्छा चलो अब सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, चलो फजर तो वैसे ही कजा हो गई थी, अब जोहर पढ़नी है ना तो अब 12 बजे नहा लेंगे। नहीं, अल्लाह ताला को याद रखें, पाक लोग पसंद है। यही बात हमारे लिए काफी होनी चाहिए कि हम अपने आप को पाक साफ रखें। आपके नाखून, आपके बाल, आपके कान, नाक, ये सब पाक साफ हो। अब देखिए हमें जो वुजू का कहा जाता है, कितनी दफा नाक झाड़नी है हमने इसमें ताकि नाक भी साफ हो। तो तहारत एक ऐसी चीज है जो हमारे दीन का हिस्सा है। अब देखिए पिछले अधियान के अंदर लोग जो थे वो इतने गंदे रहते थे, कई कई दिन नहाते नहीं थे, बाल भी लंबे हुए हैं, मैल कुचैल होता था, और इस चीज को बड़ी अपनी दीनदारी समझते थे। हमारा दीन ऐसा नहीं है कि इसको दीनदारी समझा जाए कि जो आप गंदे रहें और बस को पता ही नहीं है, नाखून बढ़ते जा रहे हैं, बाल किधर हुए हैं, उजड़े हुए पड़े हैं। तो जी बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, देखो इनको तो अपना ही होश नहीं, ये कोई पहुंचे हुए होने वाली बात नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम को देखिए, आखिरी अमल क्या था, मिसवाक की थी वफात से पहले भी, और घर आते सबसे पहले मिसवाक करते थे, अपने दांतों की तहारत का ख्याल रखे, मुंह से स्मेल ना आए, जिस्म से स्मेल ना आए, कोई करीब खड़ा हो तो वो परेशान ना हो। इवन इंसान की इस किस्म की स्मेल से फरिश्ते परेशान होते हैं, क्योंकि फरिश्ते उसके साथ रहते हैं। फरिश्तों की भी तो कुछ रायत करें ना, कि वो हमारे साथ रहते हैं, उनको कितनी बदबू आती होगी। तो कभी इंसान के अंदर से मसालों की, कभी लहसुन अदरक की, कभी इस चीज की स्मेल आ रही, उसी तरह मस्जिद चल पड़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पता चला कि इसके अंदर वो लोग नमाज पढ़ते हैं जो तहारत वाले थे। इससे पता ये भी हमें चलता है कि मस्जिद जाने के लिए खास तौर पे तहारत का एहतमाम करना चाहिए हमें। कोई जरूरी नहीं है कि आपने कोई परफ्यूम ही लगाना है तो फिर, बल्कि औरतों को तो फैलने वाली खुशबू लगा के मस्जिद में जाना ही नहीं, लेकिन साफ सुथरे हों, ना लिबास गंदा हो, ना बाल हो, ना कभी जिस्म में से ऐसी स्मेल आ रही हो। और घरों में भी अपने आप को, क्योंकि हम मस्जिद तो हमने कभी कभी जाना होता है ख्वातीन ने, अपने आप को हर वक्त पाक साफ रखने की जरूरत है। देखिए जब इंसान के पास फरिश्ते आएंगे ना नेक इंसान की रूह लेने के लिए, तो कहेंगे एक पाक रूह जो पाक जिस्म में थी। तो इसका मतलब है मोमिन का जिस्म भी पाक होता है, रूह भी पाक होती है। और दूसरी यहाँ पे एक और तफसीर में ये भी है कि जो पाकी, कौन सी पाकी, यानी जो गुनाहों से भी पाक रहते हैं, गुनाह भी गंदगी है ना, इनसे भी अपने आप को पाक रखते हैं। तो गुनाहों से भी पाक रहना है और अपने आप को वैसे भी पाक साफ रखना है। दीनदारी ये भी है कि खुद को पाक साफ रखे। दीनदारी सिर्फ नमाज रोजा की बात नहीं है, जब हम पढ़ लें अल्लाह ताला इन लोगों से मोहब्बत करता है और हम कहते हैं अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा, हम इसकी दुआएं करते। तो अल्लाह ताला ने तो बता दिया वो किन लोगों से मोहब्बत करता है, फिर भी हम मैले कुचैले रहे। वो आप किसी के घर जाना है तो तब नहाना है, तब कपड़े बदलने, नहीं तो आपके घर के अंदर नहीं है कि आप सारा दिन में गंदे ना फिरे। घर में भी तो इंसान को पाक साफ रहना है, उसी हम परवाह नहीं करते। हाँ कोई हमारे घर आ रहा है या हम कहीं जा रहे हैं तो तब पाकी साफी का हम सोचते हैं कि ये तहारत होनी चाहिए। और यहां से पता चलता है कि जो अच्छी तरह तहारत का इंतजाम करते हैं, फिर अच्छी तरह वुजू करते हैं, गंदगियों से दूर होते हैं, उनका नमाज पढ़ना अल्लाह को ज्यादा पसंद है। और वो जगह जहां पे ऐसे लोग आते हैं जो तहारत वाले होते हैं, यानी गुनाहों से भी बचने वाले होते हैं और जिस्म भी पाक साफ रखते हैं, उस जगह पर नमाज पढ़ने की फजीलत भी बढ़ जाती है, ऐसे लोगों के साथ नमाज पढ़ने की भी फजीलत बढ़ जाती है। ठीक है। और दूसरी एक और अहम बात यहां से, जो मैंने आपको बताया कि वो लोग पानी से इस्तंजा करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम लोग पानी से करते हैं, लेकिन बाज दफा हम बाहर जाते हैं वहां पे पानी मुयस्सर नहीं होता। तो याद रखिए एक बात कि अगर पानी है भी तब भी, ये वाला तो मुस्तहब बात है ना, लेकिन अगर पानी है भी या आप बाहर सफर पे भी गए हैं तो अगर आप टिश्यू से भी तहारत कर लेती हैं तो वो भी जायज है। ऐसा नहीं कि तहारत ही नहीं होगी, बाद लोग इतनी मुश्किल में पड़ जाते हैं, आए हम कैसे बाहर बाथरूम जाएं, हमारे पास पानी नहीं है वहां पे तो हम क्या करेंगे, तो कोई मसला नहीं, तहारत हो जाती है आपकी टिश्यू से भी। ठीक है, जैसे ये ढेलों से होती थी, वो सिर्फ ढेले इस्तेमाल करते थे, मगर तारीफ किन की हुई जो पानी के साथ इस्तंजा करते हैं, जो पानी से इतनी तहारत करते हैं। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं, हमारे दीन में आसानी और सहूलत है। तो अल्लाह ताला मोहब्बत करता है पाक साफ सुथरे रहने वालों से, और हमें इससे सारी बात से पता चला कि मस्जिद की फजीलत का असल दारोमदार इस पे है कि इखलास के साथ बनाई जाए, उसकी बुनियादों में इखलास हो। इसमें ना कोई लोगों को तोड़ने के लिए मस्जिद बनाई जा रही है, ना कोई फिरका वारियत के लिए मस्जिद बनाई जा रही है, ना कोई नमूदो नुमाइश के लिए है, या कोई रियाकारी दिखावे के लिए, देखो जी हमने मस्जिद बनाई है, हमारा नाम लग जाए कि मैंने मस्जिद बनाई है, वो हमारी मस्जिद है, अपनी तख्ती भी वहां पे लगा ले, या जी हम उसके ओनर है, तो ये सारी चीजें नहीं, ना कोई उसके अंदर और कोई गलत मकासद हो। तो वो मस्जिद जो है उसमें नमाज पढ़नी चाहिए। और ये भी पता चला कि नमाजी जो है, जिस मस्जिद के नमाजी नेक हैं, सौले हैं, आलिम हैं, आबिद हैं, साफ सुथरे रहने वाले हैं, अपनी तहारत का खास इहतमाम करने वाले हैं, उस मस्जिद की फजीलत बढ़ जाती है। ठीक है, और उसमें नमाज पढ़ना भी ज्यादा अफजल है दूसरी जगह नमाज पढ़ने से। तो बात समझ आ गई इस पूरे की बात की, ये समझने खुलासा हो गया। अफमन अस्सस बुनियानहु आला तक्वा मिन अल्लाह, क्या भला जिसने बुनियाद रखी अपनी इमारत की तकवा पर अल्लाह की तरफ से, और रिदवान और रजामंदी पर, यानी जो मस्जिद इस बुनियाद पर बनाई गई कि उसकी बुनियादों में अल्लाह का डर है, अल्लाह की रजा है, यानी अल्लाह खौफे खुदा से बनाई गई है ना, और इसलिए बनाई गई कि अल्लाह राजी हो जाए। खैरुन बेहतर है, अम्मन अस्सस बुनियानो अला शफा हफर जुरुफिन हारिन, ऐसी उसके मुकाबले में एक ऐसी इमारत है जो एक किनारे पे खड़ी है खाई के, ऐसी खाई जो गिरने वाली है। आपने कभी देखा कि दरिया या समुंदर के किनारे कभी ऐसी भी जमीन होती है जो अंदर से खोखली कर दी होती है पानी में, ऊपर ऊपर वो जमीन खड़ी होती है, अंदर उसके कुछ नहीं होता, उसके ऊपर कोई खड़ा हो जाएगा तो गिर जाएगा, लोग डरते हैं वहां पे खड़े होने से, क्योंकि पता है कि ये इसके ऊपर पैर रखा तो ये अभी गिरने वाली है। तो एक ने अपनी इमारत की बुनियाद तकवा पे रखी है और दूसरे ने अपनी इमारत या फिर कहाँ बनाई, एक ऐसी जगह पे जो खाई के किनारे पे है और वो खाई भी गिरने वाली है, बस अभी गिरी कि अभी गिरी। अब ये तकाबुल हो रहा है, मुकाबला या मुआजना हो रहा है, कंपैरिजन है। दो इमारतें कह लें, और सिर्फ इमारत नहीं, इसको चाहे आप अमल कह लें या इमारत कह लें, क्योंकि इमारत के पीछे भी अमल ही है ना, खुद ही तो नहीं इमारत खड़ी हो जाती, उसके पीछे कोई अमल होता है, कोई नियतें होती हैं, कोई ऐसे काम होते हैं। तो एक इमारत वो है जिसके पीछे नियत तकवा है, एक इमारत वो है जो अल्लाह ताला के डर से बनाई गई है, और दूसरी वो है जिसकी बुनियादी मुनाफ़कत है। तो ये दो पर्सनैलिटीज हैं, एक वो इंसान है जिसकी जिंदगी तकवा पे चलती, दूसरा वो इंसान है जिसकी जिंदगी मुनाफ़कत पे। ये दोनों जिंदगी एक जैसी नहीं हो सकती, या तो इंसान आखरत और अल्लाह की रजा वाली जिंदगी गुजार सकता है, या अपनी ख्वाहिशात वाली और दिखावे वाली और लोगों को राजी करने वाली। ये किरदार दो बिल्कुल उलट है, और एक मजबूत चट्टान की तरह है तकवा वाला, और जो दूसरा है उसकी तो जमीनी समझ लें ऐसे जैसे रेत पे कोई अपना घर बना दे, रेत ने तो सिरक जाना है, जो रेत पे घर बनाएगा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा घर ऐसा। ये भी जमीन ऊपर से ऐसे कर्व की तरह है और अंदर इसके कुछ भी नहीं है, खोखली है, ये भी गिर जानी है। तो ये एक वो किरदार है जो बात करते हुए अल्लाह से नहीं डरता, मामला करते हुए नहीं डरता, जिसके अंदर तकवा नहीं, खौफे खुदा नहीं है, लेन देन में खौफे खुदा नहीं है। तो मुनाफिक का तो मयार डबल होता है ना, डबल स्टैंडर्ड, वो दिखा कुछ रहा होता है और अंदर से कुछ और होता है। इसी तरह इसकी इमारत भी ऐसी, इसकी जिंदगी भी ऐसी कि वो खड़ा तो एक बजाहिर एक जमीन है, लेकिन वो अंदर से तो खोखली है, ठीक है वो। और फिर ऐसे ही जो जिंदगी होगी वो कहाँ जाएगी, फनहार अभी ही फी नारी जहन्नम, फिर ले गिरी उसको आग में जहन्नुम की, ऐसी इमारत उसको जहन्नुम की आग में ही लेके गिरेगी, यानी उसका और कोई ठिकाना नहीं है। तो जिस जिंदगी में इखलास नहीं है ना, जिस जिंदगी में दिखावा ऊपर से कुछ और है अंदर से कुछ और है, वो जिंदगी ऐसी ही है, वो किरदार ऐसा है। ये एक पूरी पर्सनैलिटी होती, सिर्फ एक इमारत नहीं है, इसके पीछे पूरी पर्सनैलिटी। और अगर हम ये समझते हैं ना कि अल्फाज बोलने से कुछ हो जाता है, तो देखें अगर ऐसा कुछ होता होता तो वो भी कसमें खा करके, अल्फाज तो उनके इतने अच्छे हैं, इन अरदना इल्लल हुस्ना, हमने तो बस अच्छाई का ही भलाई का ही हमारा क्या काम था, हमने तो हमारा मकसद भलाई के सिवा तो कुछ भी नहीं था, बातें तो बहुत अच्छी हैं। और आज दुनिया में बातें बहुत प्यारी प्यारी बोली जा रही हैं, मगर इन अल्फाज की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इनके पीछे जो नियतें कुछ और है। इसीलिए आप देखें कितनी बातें हो रही हैं दुनिया में, कोई आपसे वादा करता है और उसके बाद वादे का वक्त जब आता है तो वो पता ही नहीं होता वो कहाँ, कोई आपसे चीज ले लेता है और कहता है कि मैं फलां वक्त में दूंगा, वो देता ही नहीं। अल्फाज कोई माने नहीं रखते, कसमें कोई माने नहीं रखती अगर उनके पीछे नियत दुरुस्त नहीं है। आज हमारा मसला ये है कि अल्फाज की हद तक तो हम सब बहुत अच्छे अच्छे बोल बोलते हैं, बहुत प्यारे बातें हम सबकी इतनी अच्छी हैं, बातों में हम सब माहिर हैं, एक से एक बड़े अल्फाज कहते हैं, खूबसूरत बातें करते हैं, मगर अपने अल्फाज की कोई कीमत देने को तैयार नहीं है। और नतीजा क्या है कि आज अल्फाज सिर्फ रद्दी के टुकड़ों की तरह ही है, जो रद्दी के टुकड़े आपने देखा कागज के पुर्जे, उनको हवाएं उड़ाई फिरती हैं, गलियों में कूचों में हर तरफ पड़े होते हैं, बेकीमत होते हैं, ये हमारे अल्फाज आज यही बनते हैं, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है, उस कागज की तरह जो उड़ता फिरता है बस। आज देखें दीन के नाम पे कितनी तकरीरें हैं, अल्लाह रसूल के बारे में, आखरत के बारे में दर्स देख लें कितने हो रहे हैं, जगह जगह बातें कितनी हो रही हैं, मगर उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ भी नहीं। जिंदगियां देख लो तो उनमें कोई दीन नहीं है, कोई आखरत की प्रायोरिटी नहीं है, कोई अल्लाह रसूल से मोहब्बत नजर नहीं आ रही, मगर तकरीरें देखो तो उसमें नारे हैं, उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं। हम सब सामने से कैसे नजर आते हैं मगर अंदर से क्या है? जरा सी हमारी भी अना पे चोट लग जाए तो हमारा हाल क्या होता है? जरा सी हम देख लें कि कोई हमसे आगे बढ़ रहा है तो हमारे अंदर हसद का क्या हाल हो जाता है? जरा सी हमें लग जाए कि हमारे मकाम के आगे, जैसे ये अबू आमिर राहिब था, मेरा जो मकाम है इससे आगे कोई मकाम पा रहा है तो क्या होता है? तो मुनाफिकीन की भी मसले ये थे कि बातें तो बहुत प्यारी प्यारी थी लेकिन अंदर कुछ नहीं था। इमारत तो खड़ी कर दी मस्जिद के नाम पे लेकिन वो इमारत सिवाय जरर के और कुछ नहीं थी। तो अल्लाह ताला के हाँ बजाहिर लेकिन चीजों का उसका कोई भी वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं है जब तक कि उसके पीछे नियत सही नहीं है। और ये आपके सामने मस्जिद की भी बात हो गई, नाम मस्जिद और अगर काम उसमें सही नहीं तो वो मस्जिद नहीं है अल्लाह के नजदीक, वो चीज है जो लेके उसको जहन्नुम में गिर जाएगी। इसी तरह बजाहिर बातें कितनी खुशगुन लेकिन उनके पीछे कुछ नहीं है तो अल्लाह के नजदीक कोई वैल्यू नहीं। इसलिए इमारतें बना लें, काम कर लें, जाहिर उन्होंने मेहनत ही की होगी, इमारत खड़ी करने भी कोई छोटा काम तो नहीं, उसके लिए फंड जमा किए होंगे, मेहनत की होगी, उसको कंस्ट्रक्ट किया होगा, कितनी तामीर के ऊपर भी तो कितनी ही मेहनत लगती है, मगर कोई वैल्यू नहीं इसकी। आप इसको ऐसे ही समझ लें, देखें आप किसी को पानी पिलाती हैं उसके ऊपर अजर पाती हैं, रोबोट किसी को पानी पिलाएगा तो उसके पास कोई अजर नहीं है। क्या हो अजर है? पानी अमल तो सेम ही है, वो भी पानी लेके चलता हुआ आया, आप भी पानी लेके चलती भी गई, क्या फर्क है? पानी भी सेम है, आपको अजर और उसको क्यों नहीं मिलेगा? उसके पीछे कोई नियत नहीं, कोई इखलास नहीं है, कोई अल्लाह के लिए करना नहीं है, तो उसके अमल का जीरो अजर है और आपके अमल का जन्नत। तो फर्क है, नियतों की वजह से फर्क है। बेसोचे समझे काम ना करें, ना ही ऐसे काम करें जिसके अंदर अपनी अना, अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी जात को आगे करना, अपनी जात की वाह वाह ये चीजें हो, ये पता चल जाता है। अब देखिए वो अबू आमिर राहिब जो था वो छुपा हुआ था लोगों में जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए, वो तो बड़ा जाहिद और बड़ा आबिद और बड़ा दरवेश और बड़ा ही दुनिया से अलग कटा हुआ, लेकिन देखो वही दुनिया उसके अंदर मोहब्बत थी इसकी, तभी उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कैसे आ गए, ये तो सारे मेरे आगे पीछे होते थे, मुझे पूछते थे, अब मेरे से कट के ये वहां चले जाएंगे तो मेरी फिर क्या बड़ाई रह जाएगी? तो मस्जिद-ए-ज़रार हमें बड़ा ही कुछ समझा देती है। मस्जिद-ए-ज़रार वाले ना काम करें ना तरीके अपनाएं, जिंदगी साफ सुथरी होनी चाहिए जैसे इनकी है जो मस्जिद-ए-कुबा वाले थे। हैं दोनों ही इमारतें, हैं दोनों ही मस्जिदें, एक मस्जिद को कहा गया गिरा दो, दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ना इतना बड़ा अजर हो गया। तो والله لا يهدي القوم الظالمين، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، یعنی یہ جو منافق ہیں یہ ظالم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، جن کی نیتیں خراب ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، اوپر سے کچھ ہوں اندر سے کچھ ہوں، ڈبل فیس ڈبل گیم کھیلتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کرداروں کو سامنے رکھ کے نا، تو پھر ہم اپنا بھی جائزہ لیں، ہمارے اعمال کی بنیاد کس پہ ہے؟ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، تقویٰ والی زندگی ہے، یا بس باتیں ہی کرتے رہتے ہیں اور زندگی صرف باتوں کا ہی نام سمجھ لی ہے؟ اچھی اچھی باتیں کرتے رہو جس سے لوگ خوش ہوتے رہیں، واہ واہ کرتے رہیں، خوبصورت باتیں دکھاتے رہو، انہی کا دکھاوا ہے، انہی کی شہرت ہو جائے، یہ باتیں بڑی اچھی کرتی ہیں. یا میں وہ